एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार श्रोताओं, आज हम एक ऐसे विषय की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसने न केवल पिछली सदी को बल्कि हमारी आज की दुनिया को भी बुनियादी तौर पर बदल दिया। प्रथम विश्व युद्ध।
और इस सफर में हमारे गाइड होंगे सर माइकल हॉवर्ड, 20वीं सदी के एक बेहद सम्मानित सैन्य इतिहासकार। हम उनकी दो प्रमुख किताबों द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन से निकले विचारों पर चर्चा करेंगे।
बिल्कुल।
और ये सिर्फ इतिहास की बातें नहीं है, है ना? मतलब हॉवर्ड का जो विश्लेषण है वो हमें आज भी अंतर्राष्ट्रीय टकराव, युद्ध के बदलते तरीके, नेतृत्व के जो चूकों और बड़े सामाजिक बदलावों को समझने में काफी मदद करता है।
हाँ हाँ, बिल्कुल।
तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल।
जरूर, लेकिन पहले माइकल हॉवर्ड 1922-2019 के बारे में थोड़ा जानना दिलचस्प होगा। वो सिर्फ लाइब्रेरी में बैठकर लिखने वाले इतिहासकार नहीं थे।
हाँ, ये बात तो है, यही चीज उन्हें खास बनाती है। मुझे लगता है उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना में एक युवा अफसर के तौर पर इटली में लड़ाई लड़ी थी
जी।
और उन्हें बहादुरी के लिए मिलिट्री क्रॉस भी मिला था। मतलब उन्होंने युद्ध को सिर्फ पढ़ा नहीं, जिया भी था।
सही कहा,
यह अनुभव उनके लेखन में जरूर झलकता होगा।
निश्चित रूप से, यही अनुभव उनके विश्लेषण को एक, आप कह सकते हैं, एक व्यवहारिक गहराई देता है। युद्ध के बाद उन्होंने किंग्स कॉलेज लंदन में वॉर स्टडीज विभाग की सह स्थापना की और बाद में ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर रहे।
अच्छा।
उनका नजरिया भी थोड़ा अलग था। वो युद्ध को सिर्फ सेनाओं की गतिविधियों तक ही नहीं देखते थे, बल्कि उसे राजनीति, समाज और संस्कृति के बड़े दायरे में रखकर देखते थे।
मतलब एक होलिस्टिक व्यू कह सकते हैं।
हाँ बिल्कुल, वो युद्ध को इतिहास की एक बड़ी धारा का हिस्सा मानते थे।
तो इन किताबों में हॉवर्ड प्रथम विश्व युद्ध के बारे में मुख्य रूप से क्या कहते हैं, उनका केंद्रीय तर्क क्या है?
देखिए, हॉवर्ड का सबसे बड़ा तर्क यह है कि प्रथम विश्व युद्ध कोई अचानक हुई राजनीतिक या सैन्य दुर्घटना नहीं थी, बल्कि ये यूरोपीय सभ्यता की एक गहरी सांस्कृतिक और सामाजिक विफलता का हिंसक नतीजा था।
सांस्कृतिक विफलता, ये थोड़ा समझाएंगे? मतलब नेताओं की गलती से ज्यादा कुछ?
हाँ, उनका मानना था कि ये 19वीं सदी की मानसिकता, जिसमें राष्ट्रवाद का जुनून था, सामाजिक डार्विनवाद की सोच थी।
मतलब वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बात?
हाँ हाँ, वही कि ताकतवर राष्ट्रीय बचेगा, और सेना को महिमा मंडित करने का चलन था। इन सबके साथ जब 20वीं सदी की बेरहम औद्योगिक तकनीक मिली,
जैसे मशीन गन, भारी तोपें,
बिल्कुल, तो इन दोनों के बीच एक खतरनाक टकराव हुआ। मतलब नेताओं और आम लोगों की सोच पुरानी थी, लेकिन हथियार नए और कहीं ज्यादा विनाशकारी थे।
अच्छा, तो ये सोच और तकनीक का एक घातक मेल था।
एकदम। हॉवर्ड इसे 19वीं सदी के यूरोप के अंत और आधुनिक दुनिया के हिंसक जन्म के तौर पर देखते हैं। इसने न सिर्फ युद्ध लड़ने के तरीके और देशों के आपसी रिश्ते बदले, बल्कि दुनिया भर में समाज, औरतों की भूमिका, अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय पहचान जैसी चीजों को भी जड़ से बदल दिया।
और वो बड़ा सवाल कि यूरोप के इतने विकसित, मतलब आपस में इतने जुड़े हुए देश, वो इतने बड़े आत्मघाती युद्ध में कैसे कूद पड़े? हॉवर्ड इसका क्या जवाब देते हैं?
उनका कहना है कि ये किसी एक घटना की वजह से नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि बस एक चिंगारी लगी और आग भड़क गई, बल्कि ये गहरी समस्याओं, गलत रणनीतिक सोच और आने वाले युद्ध की असलियत को समझने में सबकी, आप कहें तो, सामूहिक नाकामी का नतीजा था।
मतलब ये लगभग तय सा हो गया था
एक तरह से। हाँ, परिस्थितियां ऐसी बन गई थी कि युद्ध लगभग अनिवार्य सा लगने लगा था।
चलिए थोड़ा और समझते हैं कि हॉवर्ड युद्ध के विकास को कैसे देखते हैं। शुरुआत युद्ध से पहले के माहौल से करते हैं। आपने कहा कि ये होना तैसा लग रहा था।
हाँ, हॉवर्ड 1914 के यूरोप को एक बारूद के ढेर जैसा बताते हैं। तनाव कई वजहों से था, राजनीतिक ढांचा ही देखिए, अस्थिर था। पांच बड़ी ताकतें थीं और वो दो दुश्मन खेमों में बटी थीं।
हाँ, वो ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एंटेंट।
बिल्कुल, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एक तरफ और फ्रांस, रूस, ब्रिटेन दूसरी तरफ। फिर आपस में साम्राज्य बढ़ाने की होड़ थी, खासकर ब्रिटेन और जर्मनी में नौसेना को लेकर।
और राष्ट्रवाद का जहर तो था ही, जैसे फ्रांस 1870 की हार का बदला चाहता था जर्मनी से।
सही, और रूस पैन स्लाविज्म, यानी सारे स्लाव लोगों को एक करने की बात कर रहा था। और जो बहुजातीय साम्राज्य थे जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी या ऑटोमन साम्राज्य, उनमें अंदरूनी तनाव उबल रहे थे।
साथ ही सेना का दबदबा बहुत था, है ना, खासकर जर्मनी में।
हाँ बिल्कुल, सेना को बहुत सम्मान दिया जाता था और युद्ध को राज्य चलाने का एक जरूरी और जायज तरीका माना जाता था। फिर जून 1914 में वो घटना हुई, आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या
सराजेवो में।
हाँ, और उसके बाद चीजें बहुत तेजी से हाथ से निकलने लगी। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को सबक सिखाने की ठानी, जर्मनी ने उसे खुली छूट दे दी, वो जिसे ब्लैंक चेक कहते हैं।
यहीं पे हॉवर्ड उन कठोर सैनिक योजनाओं की भूमिका पर जोर देते हैं, है ना, जैसे जर्मनी की वो श्लीफन योजना।
बिल्कुल, ये बहुत अहम है। इस योजना का मकसद था कि अगर रूस से युद्ध छिड़े तो पहले तेजी से बेल्जियम के रास्ते फ्रांस को हरा दो सिर्फ कुछ हफ्तों में, और फिर अपनी पूरी ताकत रूस के खिलाफ लगा दो।
तो जैसे ही रूस ने अपनी सेना जुटानी शुरू की,
जर्मनी को लगा कि अब श्लीफन योजना को तुरंत लागू करना जरूरी है, वरना वो दो मोर्चों पर फंस जाएगा। ये जो मिलिट्री टाइम टेबल थे, ये इतने सख्त थे कि इन्होंने कूटनीति या बातचीत के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी।
बाप रे, मतलब सेना की प्लानिंग ने नेताओं के हाथ बांध दिए।
काफी हद तक नेताओं की गलतफहमियां, सेनाओं की अपनी तैयारी की रफ्तार, इन सब ने मिलकर हालात को बेकाबू कर दिया।
तो युद्ध शुरू हो गया, लेकिन जैसा सोचा गया था वैसा हुआ नहीं।
1914 में ही उम्मीदें टूट गईं।
हाँ, सबकी, मतलब लगभग सबकी यही उम्मीद थी कि युद्ध छोटा होगा, कुछ हफ्तों या महीनों में खत्म हो जाएगा, सैनिक क्रिसमस तक घर वापस आ जाएंगे।
लेकिन पश्चिम में जर्मनी की फ्रांस पर तेजी से जीत की योजना मारने नदी पर रुक गई, कोई फैसला नहीं हुआ।
और यहीं पर हॉवर्ड वो बात कहते हैं कि 19वीं सदी की रणनीति 20वीं सदी की तकनीक से टकरा गई।
एकदम, 19वीं सदी की हमले की रणनीति थी पैदल सेना का बड़े पैमाने पर धावा, लेकिन 20वीं सदी की रक्षात्मक ताकत, मशीन गन, कंटीले तार, तेज फायर करने वाली तोपें, इनके सामने ये रणनीति बेकार साबित हुई। हमला करना बहुत महंगा और मुश्किल हो गया।
और इसी का नतीजा था वो भयानक खाई युद्ध, ट्रेंच वॉरफेयर, जिसके बारे में हम सब ने सुना है।
सही कहा, जब सीधा हमला नाकाम हो गया तो दोनों सेनाएं एक दूसरे को बगल से घेरने की कोशिश करने लगी। ये कोशिश करते करते वो उत्तर में समुद्र तक पहुंच गई, और फिर उत्तरी सागर से लेकर स्विट्जरलैंड तक सैकड़ों मील लंबी खाइयों का एक अटूट जाल बिछ गया। यहीं से युद्ध का वो रूप शुरू हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। एक स्थिर मोर्चा जहां इंच इंच जमीन के लिए भयानक लड़ाई होती थी और लाखों लोग मारे जाते थे। अब लड़ाई जीतने की नहीं बल्कि दुश्मन को धीरे धीरे खत्म करने की बन गई।
इसे ही हॉवर्ड संघर्षण का युद्ध कहते हैं, वॉर ऑफ अट्रिशन। 1915-16 इसी की कहानी है।
बिल्कुल, अब मकसद ये नहीं था कि दुश्मन के इलाके पर कब्जा करो, बल्कि ये कि दुश्मन के इतने सैनिक और सामान बर्बाद कर दो कि वो लड़ने लायक ही ना रहे, उसे पूरी तरह निचोड़ दो।
लेकिन ये तो बहुत अमानवीय लगता है।
ये था ही। 1915 में मित्र देशों ने कई बड़े हमले किए, लेकिन वो सब नाकाम रहे और भारी नुकसान हुआ। फिर 1916 में दो भयानक लड़ाइयां हुई, वर्दन और सोम।
हाँ, इनके नाम तो बहुत मशहूर है।
हॉवर्ड बताते हैं कि ये सिर्फ सैनिक अभियान नहीं थे, ये औद्योगिक पैमाने पर इंसानों की कटाई थी। वदुन में जर्मन कमांडर फॉकनहेन का घोषित लक्ष्य फ्रांस पर कब्जा करना नहीं था, बल्कि फ्रांसीसी सेना का खून बहाकर उसे सफेद कर देना था, मतलब उसे लड़ लड़ के पूरी तरह तोड़ देना।
कितना भयानक, ये सोचकर ही रूह कांप जाती है।
और सोम में ब्रिटिश और फ्रांसीसी हमले का पहला दिन 1 जुलाई 1916 ब्रिटिश सेना के लिए इतिहास का सबसे काला दिन बन गया। हजारों सैनिक पहले कुछ घंटों में ही मारे गए या घायल हुए।
हॉवर्ड के अनुसार ये लड़ाइयां क्या दिखाती हैं?
ये दिखाती हैं कि कैसे युद्ध अब सिर्फ सेनाओं का नहीं बल्कि पूरी औद्योगिक क्षमता और राष्ट्रीय इच्छा शक्ति की एक निर्मम प्रतियोगिता बन गया था, जिसमें इंसानी जान की कीमत बहुत कम रह गई थी। और ये भी कि उस वक्त का जो नेतृत्व था, उनकी कल्पना शक्ति पूरी तरह विफल हो चुकी थी, वो इस नए तरह के युद्ध को समझ ही नहीं पा रहे थे।
और ये लड़ाई सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रही, जैसा आपने शुरू में कहा था, 1917 तक ये एक विश्व युद्ध बन चुका था।
सही।
लड़ाई मध्य पूर्व, मेसोपोटामिया, फिलिस्तीन में फैली, अफ्रीका में जर्मन उपनिवेशों पर हमले हुए, समुद्र में पनडुब्बियों की लड़ाई चली, और लाखों औपनिवेशिक सैनिक भारत से, अफ्रीका से, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से यूरोप के मोर्चों पर लड़ने के लिए लाए गए। और हॉवर्ड जिसे संपूर्ण युद्ध, टोटल वॉर कहते हैं, वो भी हकीकत बन गया।
हाँ, इसका मतलब था कि अब सिर्फ सेनाएं नहीं लड़ रही थी, पूरा समाज युद्ध में झोंक दिया गया था। कारखानों में दिन रात हथियार बन रहे थे औरतें बड़ी संख्या में घरों से निकलकर फैक्ट्रियों और खेतों में मर्दों की जगह काम कर रही थीं।
मतलब समाज बदल रहा था।
बिल्कुल, सरकारें अर्थव्यवस्था और लोगों की जिंदगी पर पूरा नियंत्रण कर रही थीं। राशनिंग थी, कीमतों पर कंट्रोल था और जोर शोर से प्रोपेगेंडा चल रहा था ताकि लोगों का मनोबल बना रहे और दुश्मन से नफरत बढ़े।
और इसी माहौल में 1917 में अमेरिका युद्ध में शामिल हुआ।
हाँ, इसके कई कारण थे। ब्रिटेन का प्रोपेगेंडा, जर्मन पनडुब्बियों द्वारा अमेरिकी जहाजों पर हमले, जैसे लूसिटानिया का डूबना, फिर जर्मनी का अप्रतिबंधित पनडुब्बी युद्ध फिर से शुरू करना, और वो जिमरमैन टेलीग्राम जिसमें जर्मनी ने मैक्सिको को अमेरिका पर हमला करने के लिए उकसाया था।
तो अमेरिका के आने से क्या फर्क पड़ा?
हॉवर्ड के मुताबिक, अमेरिका के आने से वजन निर्णायक रूप से मित्र देशों के पक्ष में झुक गया। न सिर्फ नए सैनिकों के आने की उम्मीद से, बल्कि उससे भी ज्यादा अमेरिका की जबरदस्त आर्थिक और औद्योगिक ताकत से।
लेकिन 1917 में ही रूस में क्रांति हो गई और वो युद्ध से बाहर हो गया, इसका क्या असर हुआ?
हाँ, 1917 मित्र देशों के लिए बहुत मुश्किल साल था। एक तरफ अमेरिका आया तो दूसरी तरफ रूस बाहर हो गया। रूसी क्रांति ने जार को हटा दिया, फिर बोल्शेविक सत्ता में आए और उन्होंने जर्मनी के साथ अलग से संधि, ब्रेस्ट लिटोव्स्क करके, युद्ध छोड़ दिया।
इससे जर्मनी को फायदा हुआ होगा।
हाँ, जर्मनी को पूर्वी मोर्चे से राहत मिली। उसने अपनी बहुत सी सेनाएं पश्चिम में भेज दी। लेकिन 1917 में और भी संकट थे। फ्रांसीसी सेना में बड़े पैमाने पर विद्रोह हुए। ब्रिटेन जर्मन यूबोट हमलों की वजह से भुखमरी के कगार पर था, और रूसी क्रांति ने दुनिया भर में एक नई विचारधारा, यानी कम्युनिज्म का डर और उम्मीद दोनों पैदा कर दी।
तो आखिरकार युद्ध खत्म कैसे हुआ 1918 में, इतना सब कुछ होने के बाद?
जर्मनी ने रूस के बाहर होने का फायदा उठाकर 1918 के बसंत में पश्चिम में अपना आखिरी बड़ा हमला किया, जिसे कैजोश्लाक्ट या ल्यूडेंडॉफ आक्रमण कहते हैं। शुरुआत में उन्हें जबरदस्त सफलता मिली, वो पेरिस के काफी करीब पहुंच गए।
लेकिन फिर?
लेकिन हॉवर्ड बताते हैं कि जर्मन सेना अब पूरी तरह थक चुकी थी। उनके पास नए सैनिक या जरूरी सामान की कमी थी। उनकी सप्लाई लाइन बहुत लंबी हो गई थी। फिर मित्र देशों ने अब अमेरिकी सैनिकों की मदद से और बेहतर तालमेल के साथ टैंक, हवाई जहाज, तोपें, पैदल सेना, सबका समन्वित इस्तेमाल करके जवाबी हमला किया।
इसे 100 दिन का आक्रमण कहते हैं शायद।
हाँ बिल्कुल, अगस्त 1918 से शुरू होकर इस हमले ने जर्मन सेना की कमर तोड़ दी। उनका मनोबल टूट गया। जर्मनी के जो सहयोगी देश थे, बुल्गारिया, ऑटोमन साम्राज्य, ऑस्ट्रिया हंगरी, वो एक एक कर हार मानने लगे।
और जर्मनी में भी अंदरूनी हालात बिगड़ गए।
हाँ, जर्मनी में नौसेना में विद्रोह हुआ, फिर ये बाकी सेना और शहरों तक फैल गया। क्रांति जैसी स्थिति बन गई। कैसर विलहम द्वितीय को गद्दी छोड़कर भागना पड़ा और नई जर्मन सरकार ने 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम समझौते पर दस्तखत कर दिए।
युद्ध तो खत्म हुआ, लेकिन शांति कैसे आई? हॉवर्ड वर्साय की संधि को कैसे देखते हैं? मुझे याद है आपने कहा था वो इसकी आलोचना करते हैं।
हाँ, हॉवर्ड वर्साय संधि की तीखी आलोचना करते हैं। वो दिखाते हैं कि पेरिस शांति सम्मेलन में जीतने वाले देशों के अपने अपने और अक्सर टकराने वाले स्वार्थ थे। अमरीकी राष्ट्रपति विल्सन आदर्शवादी बातें कर रहे थे राष्ट्रों के आत्मनिर्णय और लीग ऑफ नेशंस की,
जबकि फ्रांसीसी प्रधानमंत्री क्लेमेंसो
का एक ही मकसद था, जर्मनी को इतना कमजोर कर देना कि वो फिर कभी फ्रांस पर हमला न कर सके। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज इन दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे थे, साथ ही ब्रिटेन के अपने हित भी देख रहे थे।
तो नतीजा क्या निकला?
नतीजा एक ऐसा समझौता हुआ जो हॉवर्ड के हिसाब से बहुत अस्थिर था। एक तरफ तो जर्मनी पर युद्ध का सारा दोष मढ़ दिया गया, वॉर गिल्ट क्लॉज, उस पर भारी जुर्माना, रेपरेशंस लगाया गया, उसकी जमीनें छीन ली गईं, सेना बहुत छोटी कर दी गई। ये सब जर्मनी के लिए बेहद अपमानजनक था।
लेकिन
हॉवर्ड कर्क देते हैं कि यह संधि इतनी सख्त भी नहीं थी कि जर्मनी को दोबारा एक बड़ी ताकत बनने से हमेशा के लिए रोक सके। इसने जर्मनी में कड़वाहट, अपमान और बदले की भावना पैदा की, जिसने आगे चलकर हिटलर और नाजी पार्टी के उदय में मदद की।
तो मतलब इसने भविष्य के संघर्ष के बीज बो दिए।
हाँ, हॉवर्ड तो यहाँ तक कहते हैं कि पहला और दूसरा विश्व युद्ध एक तरह से 20वीं सदी के एक बड़े यूरोपीय गृह युद्ध के दो चरण थे, और वर्साय की संधि ने दूसरे चरण की जमीन तैयार कर दी थी।
युद्ध के बाद दुनिया का नक्शा भी तो बदल गया।
हाँ,
बड़े बड़े साम्राज्य ढह गए।
बिल्कुल, 4 बड़े साम्राज्य खत्म हो गए, जर्मन, ऑस्ट्रो हंगेरियन, रूसी और ऑटोमन। इनकी जगह यूरोप में कई नए देश बने, जैसे पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया। मध्य पूर्व का नक्शा भी बदल गया, दुनिया का शक्ति संतुलन बदल गया। यूरोप कमजोर हुआ, अमेरिका और जापान जैसी ताकतें उभरी।
तो हॉवर्ड के विश्लेषण से जो मुख्य बातें, जो थीम उभरती हैं, वो क्या है संक्षेप में?
हाँ, कई अहम बातें हैं। पहली तो यही कि युद्ध कैसे सीमित झड़पों से बढ़कर संपूर्ण युद्ध बन गया, जिसमें सिर्फ सेनाएं नहीं बल्कि पूरा समाज और पूरी अर्थव्यवस्था शामिल थी। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था।
हाँ, ये आज के बड़े टकरावों में भी हम कहीं ना कहीं देखते हैं कैसे देश अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं।
दूसरी अहम बात है राजनीतिक गलत अनुमानों और कल्पना की विफलता। नेताओं ने सोचा कुछ था, हो कुछ और गया। वो युद्ध की असलियत, उसकी भयावहता का अंदाजा ही नहीं लगा पाए। हॉवर्ड दिखाते हैं कि कैसे छोटे फैसले, गलत फहमियां और अकड़ बड़े विनाश का कारण बन सकते हैं।
ये तो आज के नेताओं के लिए भी एक बड़ी चेतावनी है ना?
बिल्कुल। तीसरी बात तकनीक की भूमिका। नई तकनीकें आई, मशीन गन, भारी तोपें, जहरीली गैस, बाद में टैंक, हवाई जहाज। उम्मीद थी कि इनसे युद्ध जल्दी खत्म होगा, निर्णायक होगा, लेकिन हुआ उल्टा। इन्होंने युद्ध को और भयानक और लंबा बना दिया, गतिरोध को और मजबूत कर दिया।
ये तकनीक का विरोधाभास है जो आज एआई और साइबर हथियारों के जमाने में भी मुझे लगता है बहुत प्रासंगिक है।
सही कहा। चौथा, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव। युद्ध ने औरतों को घर से बाहर निकाला, उन्हें मर्दों के बराबर काम करने का मौका दिया। इसने पुराने सामाजिक ढांचे, वर्ग संरचनाओं को हिला दिया, लोगों में नई राजनीतिक चेतना जगाई। साथ ही इसने 19वीं सदी के तरक्की और तर्क में भरोसे को तोड़ दिया, एक मोहभंग की स्थिति पैदा हुई।
और पांचवा,
यूरोपीय ताकत का अंत और एक खराब शांति समझौता। युद्ध ने यूरोप को आर्थिक और नैतिक रूप से कमजोर कर दिया। अमेरिका जैसी गैर यूरोपीय ताकतें दुनिया के मंच पर ज्यादा अहम हो गईं। और वर्साई की संधि, जैसा हमने कहा, उसने शांति लाने की बजाय नफरत और भविष्य की युद्ध की जमीन तैयार की। राष्ट्रवाद, जो युद्ध का एक कारण था, वो युद्ध के बाद और भी ज्यादा उग्र और विनाशकारी ताकत बनकर उभरा।
हॉवर्ड की किताबों में कुछ ऐसे विचार या पंक्तियां भी होंगी जो खास तौर पर याद रह जाती हैं।
हाँ, कई हैं। जैसे वो कहते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध किसी आपराधिक साजिश या भारी भूल का नतीजा नहीं, बल्कि उन लोगों द्वारा की गई एक दुखद गलत गणना का परिणाम था जो खुद को अपने देशों का सम्मानीय सेवक मानते थे।
ये बड़ी गहरी बात है। मतलब अच्छे इरादों से भी तबाही आ सकती है।
बिल्कुल। एक और बात जो वो कहते हैं, युद्ध ने न केवल यह बदला कि यूरोपीय कैसे लड़ते थे, बल्कि यह भी कि वे कैसे रहते थे, काम करते थे और खुद अपने समाजों के बारे में सोचते थे।
हाँ, ये युद्ध के बहुत व्यापक असर को दिखाता है। सिर्फ लड़ाई के मैदान तक सीमित नहीं था ये।
तकनीक पर उनकी ये टिप्पणी भी सोचने लायक है। प्रौद्योगिकी ने युद्ध में गतिशीलता और निर्णायकता वापस लाने का वादा किया, लेकिन इसके बजाय गतिरोध के नए रूप बनाए जो मानवीय दृष्टि से और भी अधिक महंगे थे।
अप्रत्याशित परिणाम। और एक और बात जो आपने बताई थी कि युद्ध ने यूरोपीय सदी को खत्म कर दिया।
हाँ, वो कहते हैं युद्ध ने यूरोपीय सभ्यता को समाप्त नहीं किया जैसा कि कई समकालीन पर्यवेक्षकों को डर था, लेकिन इसने यूरोपीय सदी को समाप्त कर दिया। मतलब दुनिया पे यूरोप का जो दबदबा था वो खत्म हो गया।
और आखिर में इतिहास और याददाश्त पर उनका क्या कहना है?
वो कहते हैं युद्ध की स्मृति बाद के यूरोपीय विकास को आकार देने में लगभग उतनी ही महत्वपूर्ण हो गई जितनी कि युद्ध स्वयं। यानी हम इतिहास को कैसे याद रखते हैं, उसकी व्याख्या कैसे करते हैं, ये हमारे आज और कल को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है।
ये सब बातें सिर्फ किताबी नहीं हैं, जैसा हमने शुरू में कहा था। हॉवर्ड का विश्लेषण हमें आज की दुनिया समझने में भी मदद करता है ना?
हाँ बिल्कुल। सबसे पहली बात तो आज के अंतर्राष्ट्रीय टकरावों को समझना, कैसे गलतफहमियां, सख्त रवैया, राष्ट्रवाद का उफान और बातचीत की कमी छोटे संकटों को भी बड़े युद्धों में बदल सकती है। ये आज के हॉटस्पॉट्स को देखते हुए बहुत प्रासंगिक लगता है।
बिल्कुल। और ये संकट के समय फैसले लेने के बारे में भी सिखाता है कैसे वक्त का दबाव, अधूरी जानकारी, अपनी ही बनाई योजनाओं में फंस जाना और पुरानी सोच आपको गलत नतीजों तक ले जा सकती है।
चाहे आप राजनीति में हों या बिजनेस में, ये सबक हर लीडर के लिए जरूरी है कि बदलती परिस्थितियों के हिसाब से ढलना कितना जरूरी है और अपनी मूल धारणाओं पर सवाल उठाते रहना कितना जरूरी है।
और तकनीक के अनचाहे नतीजों वाली बात,
वो भी। जैसे उस वक्त मशीन गन या गैस ने युद्ध को और घातक बनाया, वैसे ही आज की नई तकनीकें जैसे AI, ड्रोन, साइबर हथियार क्या अप्रत्याशित खतरे पैदा कर सकती हैं। हम इसके बारे में बहुत सोचने की जरूरत है। ये पुरानी समस्याओं को हल करते हुए नई, शायद और बड़ी समस्याएं खड़ी कर सकती हैं।
साथ ही ये राष्ट्रवाद और प्रोपेगेंडा की ताकत के खिलाफ भी आगाह करता है।
बिल्कुल, कैसी ये चीजें आज भी सोशल मीडिया के जमाने में समाज को बांटने, नफरत फैलाने और लोगों को गुमराह करने के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। हमें ज्यादा आलोचनात्मक और जागरूक होने की जरूरत है कि हमें क्या बताया जा रहा है और क्यों।
तो इस पूरी चर्चा से आपके लिए सबसे बड़ी सीख या सबसे अहम बात क्या निकलती है?
मेरे लिए शायद सबसे बड़ी बात यह है कि प्रथम विश्व युद्ध एक तरह की सिस्टम की विफलता थी, विचारों की, कल्पना की और नई औद्योगिक ताकत की विनाशकारी क्षमता को समझने की। ये सिर्फ कुछ नेताओं या जनरलों की गलती नहीं थी, ये एक पूरी सभ्यतागत सोच का संकट था जिसके निशान आज भी कहीं ना कहीं मौजूद हैं।
हाँ, और मेरे लिए ये एहसास कि इतिहास की इतनी बड़ी दुनिया बदलने वाली घटनाएं अक्सर किसी सोची समझी बड़ी योजना या किसी अनिवार्य ऐतिहासिक ताकत के कारण नहीं, बल्कि छोटी छोटी गलतियों, गलत अनुमानों, चूके हुए मौकों और अनपेक्षित परिणामों की एक उलझी हुई दुखद लड़ी से बनती है। ये हमें आज की जटिल समस्याओं को देखते हुए थोड़ी विनम्रता और ज्यादा सावधानी बरतने की प्रेरणा देता है।
सहेगा, हावर्ड हमें यही याद दिलाते हैं कि इतिहास को, खासकर ऐसी त्रासदियों को भूलना कितना खतरनाक हो सकता है।
और ये सोचना वाकई जरूरी है कि वो चीजें जैसे राष्ट्रवाद का नशा, रणनीतिक गलतफहमियां और एक छोटे निर्णायक युद्ध का खतरनाक मोह आज भी दुनिया में कहीं ना कहीं मौजूद हैं। हावर्ड की चेतावनियां आज भी उतनी ही, शायद ज्यादा ही प्रासंगिक है।
बिल्कुल,
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।